एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
और आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ये जो हकीकत हम देखते हैं वो आखिर बनी कैसी है।
हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं ब्रायन ग्रीन की बहुत ही मशहूर किताब द एलिगेंट यूनिवर्स की। मतलब ये वो किताब है जिसने स्ट्रिंग थ्योरी जैसे मुश्किल विषय को लैब से बाहर निकाला।
सही कहा, आम लोगों तक पहुंचाया। तो सवाल यही है कि भाई, ब्रह्मांड के इतने गहरे पेचीदा से लगने वाले आइडियाज वो आज हमारे लिए जरूरी क्यों हैं?
जरूरी इसलिए हैं क्योंकि ये कोशिश है ये समझने की कि क्या सब कुछ, मतलब सारे कण, सारे बल, ये सब एक ही चीज से बने हैं।
हाँ, और ये भौतिकी के दो सबसे बड़े आइडियाज, आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स, इनको जोड़ने की एक बहुत बड़ी कोशिश है।
वही जो एक तरफ बड़े स्केल पर ब्रह्मांड समझाती है और दूसरी छोटे स्केल पर,
आपस में मतलब उनकी बनती नहीं है, है ना?
बिल्कुल। तो चलिए इसी सफर पर निकलते हैं, देखते हैं क्या वाकई ब्रह्मांड एक, जैसा ग्रीन कहते हैं, सुरुचिपूर्ण सिम्फनी है।
हाँ, देखते हैं। लेकिन पहले जिसने ये रास्ता दिखाया है उनके बारे में थोड़ा जान ले। ब्रायन ग्रीन कौन है ये?
ब्रायन ग्रीन, हाँ, ये सिर्फ एक लेखक नहीं है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फिजिक्स और मैथ के प्रोफेसर हैं और स्ट्रिंग थ्योरी की दुनिया के बड़े एक्सपर्ट्स में से एक।
अच्छा, और इनकी पढ़ाई?
हार्वर्ड से, फिर ऑक्सफोर्ड से डॉक्टरेट, वो भी रोड्स स्कॉलरशिप पर।
जी हाँ, और ये सिर्फ किताबी ज्ञानी नहीं है, एक्टिव रिसर्चर है, खासकर उन चीजों पर काम करते हैं जिन्हें कैलाबियाओ मैनिफोल्ड्स कहते हैं।
ओहो, कैलाबियाओ मैनिफोल्ड्स, ये तो स्ट्रिंग थ्योरी के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं ना?
हाँ, वो अतिरिक्त आयामों की ज्यामिति।
हाँ वही, मतलब ये विषय को अंदर बाहर हर तरह से जानते हैं, पर जानना ही काफी नहीं होता ना, समझाना भी तो जरूरी है।
और बस यही तो ग्रीन की सबसे बड़ी खासियत है, उनमें कमाल की काबिलियत है, इतने मुश्किल साइंटिफिक आइडियाज को भी एकदम आम भाषा में ले आते हैं,
कहानियों से, उदाहरणों से समझा देते हैं।
बिल्कुल, इसीलिए द एलिगेंट यूनिवर्स इतनी जबरदस्त हिट हुई।
एक एक्सपर्ट का नजरिया जिसे बड़ी आसानी से समझाया गया है।
अच्छा, तो किताब का सार क्या है, मतलब मेन पॉइंट क्या है इसका?
देखिए, किताब का दिल है स्ट्रिंग थ्योरी और इसका जो मूल विचार है ना, वो सच में क्रांतिकारी है।
क्या?
कि हकीकत की सबसे छोटी चीजें वो बिंदु जैसे कण नहीं है,
कण नहीं है तो फिर,
बल्कि ऊर्जा के नन्हे एक आयामी कांपते हुए धागे हैं, स्ट्रिंग्स।
स्ट्रिंग्स
जैसे,
धागे।
हाँ समझिए धागे, और सोचिए जैसे वायलिन का तार होता है ना, अलग अलग तरह से कंपन करता है तो अलग अलग स्वर निकलते हैं।
हाँ बिल्कुल,
बस वैसे ये स्ट्रिंग्स जब अलग अलग पैटर्न में कंपन करती हैं
तो अलग अलग कण बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क, फोटोन, ये सब। एग्जैक्टली, और सबसे कमाल की बात क्या है?
क्या?
कि एक खास तरह का कंपन बिल्कुल उस कण से मेल खाता है जो गुरुत्वाकर्षण पैदा करता है, ग्रेविटॉन।
अरे वाह, तो मतलब ये गुरुत्वाकर्षण को भी समझा देती है क्वांटम लेवल पर।
हाँ, यही तो इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, ये गुरुत्वाकर्षण को क्वांटम मैकेनिक्स के साथ बड़े नेचुरली जोड़ देती है। और ये दिक्कत भौतिकी में बहुत पुरानी थी।
ये वही दिक्कत है ना जहाँ आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी,
हाँ, जो बड़े स्केल पर स्पेस टाइम के मुड़ने से गुरुत्वाकर्षण समझाती है,
क्वांटम मैकेनिक्स जो छोटी दुनिया के अजीब नियम बताती है,
वो आपस में टकरा जाते थे।
हाँ,
दोनों अपने अपने एरिया में सुपर सक्सेसफुल है। रिलेटिविटी से हम ग्रह, तारे, ब्लैक होल समझते हैं,
और क्वांटम मैकेनिक्स से हमारे चिप्स, लेजर, कंप्यूटर सब चलते हैं।
लेकिन जब दोनों को साथ लगाने की कोशिश करो, जैसे ब्लैक होल के एकदम सेंटर में या बिग बैंग के टाइम पर,
तो गणित गड़बड़ा जाता है, अनंत जवाब आने लगते हैं अजीब से। तो स्ट्रिंग थ्योरी यहाँ कैसे मदद करती है, ये धागे उस टकराव को कैसे सुलझाते हैं?
क्योंकि स्ट्रिंग्स जो हैं वो बिंदु नहीं है, उनमें थोड़ी लंबाई है, वो फैली हुई है।
अच्छा,
तो इस फैलाव के कारण वो उन अनंतताओं को, उन गड़बड़ियों को स्मूथ कर देती हैं जो बिंदु कणों के सिद्धांत में आती थी। तो ये गणित के हिसाब से ज्यादा सुरुचिपूर्ण, मतलब एलिगेंट सॉल्यूशन है।
बिल्कुल, इसीलिए किताब का नाम भी द एलिगेंट यूनिवर्स है।
समझ गया। तो किताब हमें पहले इन दो बड़े सिद्धांतों की कहानी बताती है, उनकी सक्सेस, उनकी लिमिट्स, और फिर स्ट्रिंग थ्योरी को एक हल की तरह पेश करती है।
हाँ, लेकिन कहानी सिर्फ स्ट्रिंग्स पर खत्म नहीं होती, इसमें और भी दिमाग चकरा देने वाले आइडियाज हैं।
जैसे कि
अब और क्या है?
हाँ, यहीं से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। देखिए, स्ट्रिंग थ्योरी के गणित को सही से काम करने के लिए ना कुछ बहुत चौंकाने वाली चीजों की जरूरत पड़ती है।
अच्छा, क्या चीजें?
सबसे पहली चीज है अतिरिक्त आयाम, एक्स्ट्रा डायमेंशंस।
एक्स्ट्रा डायमेंशंस मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और टाइम। इनके अलावा और भी? ये तो साइंस फिक्शन फिल्मों जैसा लग रहा है।
लगता तो है, लेकिन सिद्धांत यही कहता है कि ये जरूरी है। ज्यादातर स्ट्रिंग थ्योरी के जो वर्जन है उन्हें गणित के हिसाब से सही होने के लिए हमारे जाने पहचाने तीन स्पेस और वन टाइम आयाम के अलावा 6 या 7 और स्थानिक आयाम चाहिए।
6 या 7 और, मतलब कुल 10 या 11 आयाम। पर ये हमें दिखते क्यों नहीं, महसूस क्यों नहीं होते?
ग्रीन इसे एक बड़े अच्छे उदाहरण से समझाते हैं। गार्डन होस यानी पानी का पाइप।
हाँ, पाइप कैसे?
सोचिए, दूर से आप पाइप को देखें तो वो कैसा लगता है? एक लाइन जैसा, एक आयामी।
हाँ बिल्कुल, एक रेखा जैसा।
पर जब आप पास जाते हैं तभी उसकी मोटाई दिखती है, मतलब उसका दूसरा आयाम।
सही।
तो स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि शायद ये जो अतिरिक्त आयाम है वो इतने ज्यादा छोटे स्केल पर मुड़े हुए हैं, लिपटे हुए हैं, कॉम्पैक्टिफाइड है कि हमारी इंद्रियां या हमारे उपकरण उन्हें पकड़ ही नहीं पाते।
मतलब वो हैं तो, पर बहुत ही छोटी सी जगह में सिमटे हुए हैं। पर क्या उनका कोई असर होता है हमारी दुनिया पर?
हाँ, यही तो बात और गहरी हो जाती है। इन छिपे हुए आयामों की जो ज्यामिति है, उनका आकार,
कोई कैलाबियो मैनिफोल्ड्स?
हाँ, वो जटिल गणितीय शेप्स, वो सिर्फ गणित की कलाबाजी नहीं है। सिद्धांत के मुताबिक इन्हीं आयामों का आकार तय करता है कि स्ट्रिंग्स कैसे कंपन कर सकती हैं।
रुके, और स्ट्रिंग के कंपन ही तो कण और बल हैं।
बिल्कुल।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इन छुपे हुए आयामों की ज्यामिति ही हमारे ब्रह्मांड के फंडामेंटल नियम तय करती है।
जैसे इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होगा या बिजली का बल कितना मजबूत होगा, ये सब। ठीक समझे, ये सोचना ही कितना, मतलब, विस्मयकारी है कि हमारी हकीकत के नियम उन आयामों की बनावट में लिखे हो सकते हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते।
ये वाकई में हमारे इंद्रियों से परे वास्तविकता का एक जबरदस्त उदाहरण है। लेकिन आपने कहा था इसमें एक चुनौती है।
हाँ, चुनौती ये है कि ये जो कैलाबियाओ आकार है ना, इनके हजारों संभावित रूप हैं और हमें अभी ये नहीं पता कि इनमें से कौन सा वाला हमारे ब्रह्मांड से मेल खाता है।
बाप रे, ये तो सच में एक बड़ी पहेली है। अच्छा, और इस थ्योरी में वो सुपर सिमेट्री जैसी चीजें भी थीं?
हाँ, सुपर सिमेट्री या सूसी, ये भी एक जरूरी हिस्सा है। ये एक तरह की समरूपता, एक सिमेट्री का आइडिया है जो पदार्थ कणों, फर्मियॉन और बल कणों, बोसॉन को जोड़ती है।
अच्छा, कैसे जोड़ती है?
ये भविष्यवाणी करती है कि हर जाने पहचाने कण का एक अनदेखा सुपर पार्टनर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का सुपर इलेक्ट्रॉन, फोटोन का फुटीनो, ऐसे।
सुपर पार्टनर?
हाँ, ये सिद्धांत को गणित के हिसाब से और स्थिर बनाने में मदद करती है। हालांकि दिक्कत ये है कि अभी तक प्रयोगों में ये सुपर पार्टनर्स मिले नहीं हैं।
तो ये विज्ञान की सतत प्रक्रिया का हिस्सा है। थ्योरी कुछ कहती है, प्रयोग उसे टेस्ट करते हैं।
बिल्कुल। फिर 1990 के दशक में एक और बड़ा मोड़ आया, दूसरी सुपर स्ट्रिंग क्रांति। उस वक्त तक स्ट्रिंग थ्योरी के 5 अलग अलग वर्जन थे, है ना?
हाँ, 5। ये थोड़ा अजीब लगता है, अगर ये सब कुछ का सिद्धांत है तो 5 क्यों? एक ही होना चाहिए ना?
सही बात है। तो 1995 में एडवर्ड विटन नाम के एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट ने एक आइडिया सामने रखा।
क्या आइडिया?
उन्होंने कहा कि ये 5ों सिद्धांत असल में एक ही ज्यादा गहरे 11 आयामी सिद्धांत के अलग अलग पहलू हैं, सिर्फ अलग अलग नजरिए से देखने पर अलग लगते हैं।
11 आयाम, फिर से?
हाँ, और इस गहरे सिद्धांत को उन्होंने नाम दिया एम थ्योरी।
एम थ्योरी? एम का मतलब मिस्ट्री, मैजिक
शायद, या मेम्ब्रेन भी हो सकता है, क्योंकि एम थ्योरी में सिर्फ स्ट्रिंग्स जो एक आयामी है नहीं, बल्कि ब्रेन्स भी शामिल हैं।
ब्रेन्स मेम्ब्रेन का शॉर्ट फॉर्म?
हाँ, ये एक से ज्यादा आयामों वाली चीजें हो सकती हैं, 2 ब्रेन, झिल्ली जैसी, 3 ब्रेन वगैरह।
तो क्या कैसा हो सकता है कि हमारा पूरा 3 आयामी ब्रह्मांड
किसी ऊंचे आयाम वाले स्पेस में तैरता हुआ एक 3 ब्रेन हो?
हाँ, ये एक संभावना है जो एम थ्योरी सुझाती है।
ये तो कल्पना से भी परे है। क्या एम थ्योरी ने स्पेस और टाइम के बारे में हमारी समझ को भी बदला है?
हाँ, स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरी दोनों इस तरफ इशारा करती हैं कि शायद स्पेस और टाइम उतने फंडामेंटल नहीं हैं जितना हम सोचते आए हैं।
मतलब?
हो हो सकता है वे किसी और गहरी चीज से उभरने वाले गुण हों, और आइंस्टीन की थ्योरी के उलट यहां स्पेस टाइम शायद फट भी सकता है, अपनी बनावट अपनी टोपोलॉजी बदल सकता है। वाह, ये सब सुनने में बहुत आकर्षक लगता है, गणित के लिहाज से सुंदर भी, लेकिन सबूत, क्या इसका कोई प्रैक्टिकल सबूत है? सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
वही सबसे बड़ी चुनौती है, प्रायोगिक साक्ष्य का अभाव, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है।
क्यों नहीं है?
क्योंकि स्ट्रिंग्स या अतिरिक्त आयामों को सीधे देखने के लिए जिस लेवल की एनर्जी चाहिए वो हमारी आज की टेक्नोलॉजी की पहुंच से बहुत बहुत ज्यादा दूर है।
ओह, तो फिर वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं?
लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जैसे बड़े एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, कोशिश है कि शायद कोई अप्रत्यक्ष सबूत मिल जाए, जैसे सुपरसिमेट्री के कण, लेकिन अब तक कुछ ठोस हाथ नहीं लगा है।
तो ये एक तरह से गणितीय खूबसूरती और लॉजिकल कंसिस्टेंसी पर टिकी हुई थियरी है जो अभी कंफर्मेशन का इंतजार कर रही है।
हाँ, और यहीं पर गणित की शक्ति और सुंदरता का पहलू आता है ना?
बिल्कुल, कि कैसे एलिगेंट इक्वेशंस, सुंदर समीकरण हमें प्रकृति के रहस्यों की तरफ गाइड कर सकते हैं, भले ही हम उन्हें सीधे देख ना पाए।
और ये हमें ज्ञान की सीमाओं और संभावनाओं का भी एहसास कराता है कि हम अभी सब कुछ नहीं जानते और शायद कभी न जाने, पर ये खोज, ये कोशिश ही विज्ञान की खूबसूरती है।
और ये एकीकरण की खोज, मतलब यूनिवर्स को एक सिंगल थ्योरी से समझने का सपना, ये तो सदियों पुराना है। स्ट्रिंग थ्योरी उसी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, भले ही अभी अधूरा हो।
सही कहा।
अच्छा, तो इस सबसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन के लिए क्या सीख सकते हैं? क्या स्ट्रिंग थ्योरी हमें कुछ सोचने का तरीका दे सकती है?
हाँ, देखिए, सीधे तौर पर तो शायद नहीं, आप स्ट्रिंग थ्योरी से अपनी कार ठीक नहीं कर सकते।
हाँ, वो तो है,
पर सोचने के कई तरीके जरूर मिलते हैं। पहला, बौद्धिक विनम्रता और जिज्ञासा, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी और क्यूरियोसिटी।
मतलब
ये मानना कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब हो सकता है, उन आइडियाज के लिए खुला रहना जो पहली नजर में एकदम असंभव लगे।
हाँ, वो हार्डिन का कोट याद है जो ग्रीन इस्तेमाल करते हैं?
ब्रह्मांड न केवल उससे ज्यादा अजीब है जितना हम सोचते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा अजीब है जितना हम सोच सकते हैं।
बिल्कुल। दूसरा, अमूर्त सोच की सराहना करना, अप्रिशिएटिंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग।
कैसे?
ये देखना कि कैसे लॉजिक और गणित हमें उन सच्चाइयों तक ले जा सकते हैं जो हमारी आंखों से परे हैं। ये स्किल तो जिंदगी में हर जगह काम आती है ना, मुश्किल प्रॉब्लम सुलझाने में।
हाँ, ये तो है।
और
अंतर संबंधता को समझना, अंडरस्टैंडिंग इंटरकनेक्टेडनेस। जैसे स्ट्रिंग थ्योरी हर चीज को एक ही धागे से जोड़ती है, वैसे ही हमारी जिंदगी में भी चीजें अक्सर गहराई से जुड़ी होती हैं, सिस्टम थिंकिंग जिसे कहते हैं।
चीजों को बड़े पिक्चर में देखना,
और शायद अनिश्चितता के साथ सहज होना, कम्फर्ट विद अनसर्टेनिटी।
हाँ, ये बहुत जरूरी है, विज्ञान हमेशा आगे बढ़ता है, सारे जवाब एक साथ नहीं मिलते। स्ट्रिंग थ्योरी का अधूरापन हमें सिखाता है कि अनिश्चितता के साथ जीना और फिर भी प्रगति करना संभव है।
गहरे सवालों के बारे में सोचते हैं तो हमारी जो रोजमर्रा की चिंताएं हैं वो थोड़ी छोटी लगने लगती हैं, थोड़ा सुकून मिलता है, विस्मय होता है।
हाँ, वो ग्रीन का एक और आइडिया था ना, संभव है कि स्पेस और टाइम स्वयं मौलिक ना हो बल्कि किसी गहरे अधिक आधारभूत सब्सट्रेट के उभरते हुए गुण हो। ये तो हमारी हकीकत की नींव पर भी सवाल उठा देता है।
बिल्कुल।
तो इस पूरी बातचीत के बाद आपके लिए सबसे यादगार या कहूं चौंकाने वाली बात क्या रही?
मेरे लिए तो सबसे प्रभावशाली बात यही है कि कैसे गणित की सुंदरता और लॉजिक विज्ञान को आगे बढ़ा सकता है, पुश कर सकता है, भले ही एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिलना मुश्किल हो। ये इंसान के दिमाग की ताकत दिखाता है, कैसे हम उन चीजों की कल्पना कर सकते हैं जो हमारी सीधी पहुंच से बहुत परे हैं, और वो रूपक की भौतिकी के नियम इस ब्रह्मांडीय सिम्फनी के सामंजस्य हैं, और कर्ण संगीत के सुर हैं। ये बहुत खूबसूरत है।
हाँ, ये बात तो है, और मेरे लिए शायद सबसे बड़ी बात ये एहसास है कि हमारी जो अनुभव की दुनिया है, जो हम देखते सुनते महसूस करते हैं, वो शायद पूरी कहानी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। ये सोचना कि अदृश्य आयाम और कांपते हुए धागे ही शायद हमारे होने की वजह हैं, ये विनम्र भी बनाता है और हैरान भी करता है। ये दिखाता है कि समझने के लिए भी कितना कुछ बाकी है,
और यही तो खोज की असली खूबसूरती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।